Chapter 6, the liberation of Sarvabhauma Bharacharya.
Shri Chaitanya Charitamrita ke madhya lila adhyay 6, iska shirshak hai Sarvabhauma Bharacharya ki mukti.
So Sarvabhauma Bharacharya has now met Shri Chaitanya Mahaprabhu. He was in a swoon, in a trance, samadhi. Samadhi in the temple room, Dhanavat Pranams in front of Lord Jagannath, he appeared to be dead. Scholar and philosopher of the time. He was in charge of all of the pandits. Please go back to verse 93. And send, you can just read it in the Hindi. Verse 93, 94. Okay, read 93 and 94.
भट्टाचार्य ने कहा, हम तो मित्रों के बीच चर्चा कर रहे हैं और शास्त्रों में वर्णित बातों पर विचार कर रहे हैं, आप क्रुद ना हो। मैं तो केवल शास्त्रों के आधार पर ही बोल रहा हूं, आप इसे अपराध ना माने। श्लोक संख्या 94। श्री चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही महान एवं असाधारण भक्त हैं, किंतु हम उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग में कोई अवतार नहीं होने वाला है।
So, Gopinath Acharya, one of the confidential servants of Chaitanya Mahaprabhu and close intimate associates, the eternal associate, he is upset with Bhattacharya because Bhattacharya refuses to acknowledge that Mahaprabhu is an incarnation of Godhead. Bhattacharya is taking a position, there's no evidence. So then this Gopinath Acharya, he's becoming upset because Sabhupam Bhattacharya is not recognizing him.
The Gopinath Acharya hai, jo Shri Chaitanya Mahaprabhu ke baut ek huye shashwat parikar hai, vah yahan par Bhattacharya se naraz ho rahe the, kyunki Bhattacharya श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। भट्टाचार्य ने कहा, शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता।
So in verse 93, he's saying, we're just having a discussion among friends, don't get upset. Because Gopinath Acharya was upset. Because Sarvabhauma Bhattacharya, big philosopher, big Mayavadi. But he was unable to recognize Mahaprabhu, and obviously, and certainly, Sarvabhauma Bhattacharya is trying to calm him down, saying, that's all right, calm down. We're just having a discussion among friends and considering points in the scriptures. Don't become angry. He's trying to calm him down. Speaking on the strength of the Shastra, please don't take any offense. Oh, that's a little bit of Vaishnava etiquette here. There's a philosophical discussion taking place, and there's a strong difference of opinion. Bhattacharya is saying, I'm just trying to make a philosophical point, don't take any offense. This is a Vaishnava dealings, proper dealings. This is the way sadhus are supposed. He was actually not technically a Vaishnava at that point. He was worshipping Lord Jagannath. Well, yes and no, but he was not a pure devotee at that point, externally speaking.
The Bhattacharya ne kaha ki aap naraz mat hue kyunki hum jo darshanik ki charcha kar rahe hain aur shastron ke upar adharit charcha kar rahe hain, to yahan dekhte hain ye Vaishnava sadachar hai, kai kabar darshanik matbhed ho sakte hain, parantu ye sattva Bhattacharya sikha rahe hain ki kis prakar se hame vyavhar karna chahiye. Us samay halanki Bhattacharya ji ko bhakt abhi nahi bane the.
This is a very important and very deep pastime. It is a landmark. It's a landmark in the Chaitanya Charitamrita. The conversion of Sarvabhauma Bhattacharya, that's a milestone, in the Chaitanya Charitamrita. It is, this section is very important. We should not minimize it because he is the head philosopher, practically speaking, for all of India, because he had already defeated all the other philosophers in Bengal. Now he's moved to Jagannath Puri. So he was a huge and very famous, all over India, Sarvabhauma Bhattacharya was famous. Now Mahaprabhu is in his presence, and so the conversion of Sarvabhauma Bhattacharya is a milestone in Gaura Lila.
बंगाल में सभी दर्शनों को पराजित करने के बाद ही जगन्नाथपुरी आए थे, तो हम कह
He was playing the role of Mayavadi under Yoga Maya, Lila Shakti, Lila Shakti. Under that Lila Shakti, he was playing the role of Mayavadi. He was not really a Mayavadi. He was covered by Yoga Maya. Try to understand this point. It's not that Mahabhu actually converted a hardcore Mayavadi. That is not the proper understanding here at all. Not at all. Sarvabhauma Bhattacharya is an eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. Where's the question of him being eternally a Mayavadi philosopher, hard-hearted Mayavadi philosopher? No. That's all part of the illusion. She tried to understand when I'm trying to make this point, how Yoga Maya operates in Krishna Lila and Gaura Lila. We see how Yoga Maya operates by causing persons who appear to be non-devotees but are actually eternal associates of the Lord. This is common. This is common in the action of Yoga Maya.
Sarvam Bhattacharya and Sri Chaitanya Mahaprabhu ke nitya parikar hain. Vah bilkul itna kathor hriday wale mayavadi nahi the. Jo main yah samjhane ka prayas kar raha hu is ki yog maya kis prakar se karya karti hai Krishna Leela mein aur kis prakar se karya karti hai Chaitanya Leela mein.
So we have to remember that Sarvabhauma, but as we hear this section of Chaitanya Charitamrita, we have to remember that we're talking about an eternal associate of Mahaprabhu who is simply play-acting the role of Mayavadi under Yoga Maya. That is not his true identity. His true identity is eternal associate. He was ordered, I believe he's incarnation of Brihaspati, if I'm not mistaken, isn't it? Yes. So he's incarnation of Brihaspati, and he was ordered to come down to participate in Gaura Lila. So then how could he be a real Mayavadi? The whole thing is a play. Try to understand how, if you get one thing out of this class, try to meditate on how, the understanding of how Yoga Maya operates. A deva is brought down on the order of the Supreme Lord.
पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से जो सार्वम भट्टाचार्य हैं ये वास्तव में बृहस्पति हैं और उन्हीं की आज्ञा से बृहस्पति इस भूमि पर अवतार लेते हैं चैतन्य लीला में सार्वम भट्टाचार्य के रूप में तो इस पूरी कक्षा से जाए आप एक पॉइंट ये समझ सके कि योग माया किस प्रकार कार्य करती है इस बात में मनन कीजिए वास्तव में अवगत नहीं थे परंतु योग माया शक्ति के अंतर्गत बृहस्पति सार्वम भट्टाचार्य के रूप में आए और एक मायावादी की भूमिका निभा रहे हैं
Try to understand that Brihaspati, as the guru of Indra, and as the guru of Indra, he's the guru of all the devas also. He's no small personality, He's Jagat Guru for the heavenly planets. He's a big acharya, for heavenly planets.
जो बृहस्पति है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इंद्र के गुरु हैं और इंद्र के गुरु का अर्थ है सभी देवताओं के गुरु हैं तो स्वर्ग लोक में जगत गुरु हैं और एक बहुत बड़े आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं
Bhrigumuni is another sadhu, Brahman sadhu guru, very famous, but not in the same league as Brihaspati. You understand? Because Bhrigumuni, he sided with Daksha and fought against Lord Shiva's men, and so he had his beard cut off and then he has to wear, by the order of Lord Shiva, Bhrigu had to wear the beard of a goat. I don't know if he's still wearing it or not, but he had to take the beard of a goat because he was not, due to his offenses against Lord Shiva. He's lucky. During that fight, another guru lost his eyes and his ability to cheat. All his teeth were knocked out. He was not permitted again to chew. It was a very heavy pastime, all due to Vaishnava Parada against Lord Shiva. And Sati, Aparad, that double Aparad.
जो भृगु मुनि हैं वे भी इस बृहस्पति की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि हम देखते हैं भृगु मुनि ने दक्ष की तरफ करके भगवान शिव से युद्ध किया था और भगवान शिव ने उनकी दाढ़ी काट दी थी और बाद में उन्हें बकरी की दाढ़ी लगानी पड़ी तो मुझे नहीं पता कि अभी भी वो दाढ़ी लगी है नहीं परंतु ये बहुत ही मुख्य लीला है जो घटित प्रकटित हुई वैष्णव अपराध के कारण भगवान शिव और सती के प्रति अपराध किया था दक्ष ने.
So Narada Muni was a messenger boy. After he went to Goloka Vrindavan and had the darshan with Krishna in Dwarka, and Goloka, remember that Dwarka is a section of Goloka Vrindavan. And after having that darshan in Dwarka,
Narada Muni ek guru ke roop mein gaye the, aur jab Goloka Vrindavan ke andar gaye aur Dwarka mein unhone Bhagwan ke darshan kiye. Yaad rakhna zaruri hai ki Dwarka hai, ye Goloka Vrindavan ka hi ek hissa hai.
At that time, Narada Muni was appointed to be the messenger boy to go to all the devas to tell him the order of the Lord.
Narada Muni, एक दूत के रूप में गए थे. उन्हें आज्ञा मिली थी कि सभी देवताओं के पास जाएं एक दूत के रूप में उनको भगवान की आज्ञा बताने के लिए.
The Lord said, "I want all of you, in the some, you know, the demigods, the at least chief." The greatest devotees amongst the demigods.
तो भगवान ने उन सबको आज्ञा दी, खासकर उन्हें जो मुख्य मुख्य देवताएं हैं और महान भक्त हैं.
He said, "I am descending soon in Navadvip Dham."
भगवान ने कहा कि मैं जल्दी ही नवद्वीप धाम में अवतरित हो रहा हूँ.
I want all of you to descend and take birth in different Brahmin families and enter into my Niti Lila as my associates. This was a direct order from Krishna. And Narada Muni was a messenger boy.
मैं चाहता हूँ कि आप सभी देवता भी पृथ्वी पर जाएं, ब्राह्मण परिवारों में जन्म लें और मेरे नित्य लीला में भाग लें. ये भगवान का वो आज्ञा थी जो नारद मुनि ने सबको बताई.
The point is, this is not just a story.
बात ये है कि ये सब कोई काल्पनिक मनोकथाएं नहीं है.
I'm giving you the in-depth background explanation of this lila with Sarvabhu Bhattacharya. But otherwise, oh, Mahaprabhu perverted the famous Mayavadi, okay. No, no, no. That's external. You've got to understand this point. It is not just that Mahaprabhu, being the supreme philosopher, defeated the world's best Mayavadi. It's not so simple. I'm explaining the background, what happened, why his Brihaspati. He's already Vaishnav. But by Lila Shakti, he was ordered, by Krishna Prasad, he was ordered to come down, and he took this role of impersonalist. So that their discussion can be recorded in the Chaitanya Charitamrita for all time.
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम मात्र समझ लें कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय के सबसे महान मायावादी सार्वभौम भट्टाचार्य को परिवर्तित किए वैष्णव के रूप में. नहीं, इसके पीछे जो गहरे तथ्य ये है समझने वाली बात कि सार्वभौम भट्टाचार्य वास्तव में एक वैष्णव थे और योग शक्ति लीला शक्ति के कारण वह देवताओं के लोग से पृथ्वी पर आए और भगवान की लीलाओं में भाग ले रहे थे. ये जानना बहुत आवश्यक है सही समझ के लिए.
Now read verse 94, please. He said, first he says, "Well, just sit, let's chill down, calm down, don't worry. We're just having a little philosophical discussion now. Don't get hot."
Just Arvam Bhattacharya ने कहा कि आप शांत हो जाइए, क्रोध ना होइए, क्योंकि हम तो सिर्फ शास्त्रों के आधार पर ही बात कर रहे हैं. तो अगला श्लोक सुनिए.
But in 94, now read 94 again.
भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग है क्योंकि कलयुग में उनका अवतार नहीं होता है. ये प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है.
So he's saying, Sri Chaitanya Prabhu is certainly a great personality, but he can't be incarnation of Godhead because the Shastra says there's only three incarnations in the age of Kali.
सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से बहुत ही महान व्यक्ति हैं, परंतु वह विष्णु नहीं हो सकते क्योंकि शास्त्रों में तो बताया गया है कि विष्णु का एक नाम है त्रियुग, कि उनका कलयुग में अवतार होता ही नहीं है.
This was not due to Sarvabhauma Bhattacharya was right. There are only three incarnations mentioned in Kali Yuga, but you have to go deeper into the Shastra. So it's not that Sarvabhauma Bhattacharya was wrong. He had a valid point, but considering that he was such a big, big scholar, he should have known that there was more to the Shastra that give evidence of the covered incarnation. That was the defect. He, in spite of being such a huge scholar, he was unaware of the evidence of the covered incarnation, which is Mahaprabhu is coming as a covered incarnation. But the Shastra does say three, so he wasn't wrong.
तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का नाम एक त्रियुग है, वह गलत नहीं है, ये बात प्रमाणित है. परंतु क्योंकि क्योंकि वे इतने महान दार्शनिक थे, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसके मर्म को भी समझे। त्रियुग का अर्थ है कि तीनों युग में तो अवतार लेते हैं, परंतु कलयुग में वे छंद अवतार के रूप में अवतार लेते हैं।
So I'm repeating here because this is essential point to understand this pastime. So I'm repeating actually in this background of this lila here. Otherwise, it will not be possible to understand what was the role of Sarvabhauma Bhattacharya.
मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। नहीं तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो हिस्सा है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में, हम उसको समझ नहीं पाएंगे।
Read 95 again, please.
श्लोक संख्या 95। ये सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं, द्वापर युगों में दिखाई पड़ते हैं, किंतु कलयुग में भगवान वेश बदल कर प्रकट होते हैं। वे प्रत्येक शुभ से असुरों को मारकर श्रद्धालु को संरक्षण प्रदान नहीं करते, जो कि कलयुग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, जबकि अन्य तीन युगों में वे प्रत्यक्ष जाने जाते हैं, अतएव उनका नाम त्रियुग है।
Now we'll go on to 96, where Acharya by myself, Naya Shunya Acharya Kahi Duki Hanumane Shastra Kya Kalina Tame Kara Abhimane. Read the translation.
यह सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं।
So Gopinath Acharya, being empowered by Mahaprabhu, he's very bold. He's just cutting Bhattacharya down to science. What is this nonsense? You're supposed to know the Shastra and you do not know. You consider yourself the knower of all the Shastra, but you don't know this important point of explanation of Triyuga, you see. So he's chastising him. Hari Hari!
So Gopinath Acharya, yahan par Sarvam Bhattacharya ko daant laga rahe hain. Mahaprabhu se shakti praapt karke Gopinath Acharya बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि आप अपने आप को वैदिक शास्त्र का ज्ञाता मानते हैं, तो आपको त्रियुग का जो तात्पर्य है ये पता होना चाहिए।
97 भगवत परतत्व शास्त्र ना प्रदान से द्वे ग्रंथ वाक्य नहीं अवदान। ट्रांसलेशन।
श्रीमद् भागवतम तथा महाभारत दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र हैं, किंतु आपने इनके कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
So Gopinath Acharya is no fool. He's bringing now the shastric evidence that was omitted by the great scholar Sarvabhauma. Now he's bringing the evidence that was omitted.
Gopinath Acharya यहाँ कोई मूर्ख नहीं है। ऐसा प्रश्न किए जाने पर वे तुरंत ही शास्त्रों में से प्रमाण निकालकर सार्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं।
नरिये से दुए कहे कादिते साक्षात अवतार तुम्हें कहा कलिते नहीं विष्णु रा प्रचार।
श्रीमद् भागवतम तथा महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान विष्णु का प्राकट्य अवतार ही नहीं होता।
So now Gopinath Acharya is pointing out Sarvabhauma Bhattacharya's ignorance of Srimad Bhagavatam. I believe because it's the 11th canto, is it not, where Mahaprabhu is described as the incarnation and his mission and what he will do, everything. 11th canto, so Sarvabhauma Acharya is apparently ignorant of the Srimad Bhagavatam because he wasn't studying Srimad Bhagavatam, that's the point. He was studying the Vedanta. And as far as he was concerned, the Srimad Bhagavatam, he's not recognizing it as the cream of Vedanta.
तो गोपीनाथ आचार्य यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य की श्रीमद् भागवतम के विषय में अज्ञानता की ओर अंकित कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का बारे में श्लोक बताया गया है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, हालांकि श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, वेदांत भी पढ़ते थे, परंतु श्रीमद् भागवतम को सर्वोच्च शास्त्र के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे।
Problem with Vedantists is they ignore Srimad Bhagavatam, but if they read it, they can't understand it because the only way you can understand Srimad Bhagavatam is if you hear from a pure devotee of the Lord, from a Braja devotee. There's no other way you can understand Srimad Bhagavatam.
Vedant, this जो है उनके साथ समस्या ये है कि वे श्रीमद् भागवतम के बारे में उनको इसको नहीं पढ़ते, और अगर वे पढ़ते भी हैं तो उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को समझने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है किसी शुद्ध भक्त के मुख से उसको श्रवण करना।
Today is shloka.
तो आज का श्लोक जो बोर्ड पर लिखा हुआ है,
कलयुगे निदवतार न करे भगवान अतएव त्रियुग करे कहे तरना। Everybody.
कलयुगे
Yes. The meter is people are jumping ahead. Just watch my hand closely. Say, do we? No. Kali Yuga Lila Avatarana Kali Bhagavan. Kali Yuga Lila Avatarana Kali Bhagavan. Ateva Tri Yuga Kali Kali Tarana. Ateva Tri Yuga Kali Tarana. Kali Yuga Lila Avatarana Kali Bhagavan. Ateva Tri Yuga Kali Kali Tarana.
Ateva Tri Yuga Kali
Tarana.
इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई लीला अवतार नहीं होता, इसलिए वे त्रियुग कहलाते हैं और यह उनके पवित्र नामों में से एक है।
Okay, wait. This first point that Gopinath Acharya is making. In the age of Kali, there's no lila avatar, and that's why he's known as Triyuga. This point. This is the answer he's giving to the big scholar. He's defeating the world's biggest scholar. This is what the devotees of Mahaprabhu could do. Hari Ba! We see practically it's still going on now, the pastime in modern times is still going on. So, get the point that there's no Leela avatar in Kali Yuga. That's why it's known as Sri Yuga.
Gopinathacharya yahan par spasht uttar de rahe hain aur us samay vishv ke sabse mahaan darshanik ko parajit kar rahe hain ki unhein unka kalyug ke andar koi leela avatar nahi hota isliye ve triyug kehlate hain aur yahi parampara hum aaj ke samaj mein bhi dekhte hain jahan mahaprabhu ke bhakt jo vaishnav hain bade bade jo darshanik hain mayavadi unko parajit karte hain.
So Chaitanya Mahaprabhu is not in the same category as Leela avatars. This point, we have to download this point. It's a very important point. He's not in the same category as Leela avatars.
Shri Chaitanya Mahaprabhu, Leela avatar ki shredi bhi nahi aate. Is baat ko hame hriday ke andar utar lena chahiye.
So who are Leela avatars?
Leela avatar kaun kaun se hote hain?
Who are Leela avatars as distinct from Mahaprabhu? So who are? Name a Leela avatar. Lord Ramachandra, yes. Adibal.
Adibal.
Huh? Lord Shingadev, yes. Adibal. Who else? Parashuram. Yes, he is empowered incarnation. I think he's Saktivesh. Parashuram is Saktivesh, isn't he? Huh? He's counted as Leela avatar. There's portions of primary portions and portions and portions of primary portions, you know. Then there's who else? Brahadev. So these are the Leela avatars. They're incarnations of Lord Vishnu. They're emanating from Lord Vishnu, although they are full incarnations. They are plenary portions, they are referred to as, but plenary means full. So they are not, although they are not exactly the same as Krishna, yet they are endowed with his full potency.
Jaise yahan pe naam hai, Bhagwan Ramchand, Narsingh Dev, Vaman Dev, Purva Matsyata, ye sab Leela Avatar ki shredi mein aate hain. Aur Leela Avatar apne aap mein poorn hote hain. हालांकि वह उनको कृष्ण के बिल्कुल समान नहीं कह सकते परंतु उनके अंदर सारी शक्तियां होती
तात्पर्य
लीला अवतार का अर्थ है भगवान का अवतार जो बिना किसी विशेष प्रयास के नाना प्रकार की लीलाएं करता है वे एक के बाद एक लीलाएं करते हैं और वे सब दिव्य आनंद से पूर्ण होती हैं तथा ये लीलाएं परम पुरुष द्वारा पूर्णतया नियंत्रित होती है इन लीलाओं में परम पुरुष सर्वथा स्वतंत्र होते हैं
ओके दिस स्टॉप वी हैव टू स्टॉप ऑन दिस पॉइंट द सुप्रीम पर्सन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर्स इन दिस पास्ट टाइम्स दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन महाप्रभु एंड लीला अवतार्स द प्रॉपर्ट इज मेकिंग क्रिस्टल क्लियर हियर
तो महाप्रभु और लीला अवतार में जो अंतर है यहां पर शिला प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि लीलाओं में परम पुरुष सर्वथा स्वतंत्र होते हैं
श्री चैतन्य महाप्रभु पॉइंटेड आउट डिड यू रीड
श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने इंगित
किया अनलिमिटेड लीला अवतार्स
लीला अवतारों की संख्या कभी नहीं
वी आर स्टडीिंग इन द श्रीमद् भागवतम ओनली सम ऑफ द प्रिंसिपल लीला अवतार्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर अनलिमिटेड यूनिवर्सेस And in other universes, more incarnations are appearing that we don't hear about in the Bhagavatam. We're only hearing about something most important in the Bhagavatam. It's an outline in one sense, abbreviation.
लीला अवतार की जो संख्या है उनकी गिनती नहीं की जा सकती ये अनगिनत होते हैं और श्रीमद् भागवतम में जो हम लीला अवतार के बारे में पढ़ते हैं वह कुछ मुख्य लीला अवतारों के बारे में ही चर्चा की गई
And our Bhagavatam, which we're receiving on this planet, is quite abbreviated. On the higher planets, there are Bhagavatams with millions of volumes, because they have got the brain there. We haven't got the brain capacity of what Prabhupada called puppy brain.
जो पृथ्वी लोक पर श्रीमद् भागवतम है, बहुत ही संक्षिप्त में है। जो देवताओं के लोक पर श्रीमद् भागवतम होती है, वे बहुत ही विस्तार रूप में होती है। उसमें कई लाखों volumes होती हैं। क्योंकि उनके पास बुद्धि है इसलिए वो समझ सकते हैं इतने विस्तार से
But scholars like Brihaspati, no problem. I can understand Srimad Bhagavatam. He is a pure Vaishnava. He is a pure Vaishnava.
जो बृहस्पति जैसे वहाँ पर विद्वान हैं और वो वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, तो वे समझ सकते हैं.
We should never confuse Brihaspati with Bhrigu Muni, who is not counted as a pure devotee. That's obvious because he chose the wrong side in the fight with Lord Shiva. He opposed Lord Shiva and he paid, and that was a huge uproar. A pure devotee cannot make an uproar like that. So we cannot count Bhrigu. He's a big, big sadhu, but we cannot count him as a pure devotee. We just can't.
शुद्ध वैष्णव नहीं है क्योंकि एक शुद्ध भक्त अपराध नहीं करता और भृगु मुनि ने भगवान शिव के विरुद्ध युद्ध करके अपराध किया था हालांकि वह बहुत महान साधु है परंतु शुद्ध भक्त नहीं है.
Next week, the Lord told Sanatana, I shall explain the chief lila. So we're studying only the chief lila avatars. In Mahaprabhu's own admission, we're studying only the chief lila avatars.
महाप्रभु ने सनातन से कहा लीला अवतार कृष्ण राधा याय गणन प्रभा करिया कहे देखन दर्शन मत्सरे कूर्मा रघुनाथ नरसिंह वामन वारा आदि लेखा या ना याय गणन. इस तरह उन्होंने भगवान के अवतारों की गणना की गई जिनमें मत्स्य कूर्म भगवान रामचंद्र नरसिंह देव वामन देव तथा वारा सम्मिलित हैं. इस प्रकार असंख्य लीला अवतार हैं और ये सभी अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं. उदाहरण अर्थ वरा अवतार ने गर्भोदक सागर के गंध से पूरे पृथ्वी ग्रह को बाहर निकाला. कूर्मा अवतार समुद्र मंथन के समय प्रधान आधार बने और भगवान नरसिंह देव आधे पुरुष तथा आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए. लीला अवतारों के ये कुछ अद्भुत तथा असाधारण गुण हैं.
श्री अरूप Did you get to the Lagu Bhagavatamrita yet?
This is the next point.
Srila
Rupa Goswami ne apne Lagu Bhagavatamrita namak granth mein nimnalikhit 25 leela
avatars. I just want to point out that here we have a list of leela avatars that are not much mentioned, if at all, in the Bhagavatam. There are other Puranas where these avatars will be described, but not the Bhagavad Purana. Some names we're not familiar with so much.
There are leela avatars ki ek suchi di gayi hai. Inme se kuch
they're mentioned in the Bhagavatam, but all of these personalities are mentioned.
The Bhagavatam mein bhi inka varnan aata hai. ये है 25 लीला अवतारों के नाम गिनाए हैं. ये है चतुसन नारद वरह मत्स्य यज्ञ नर नारायण कपिल दत्तात्रेय हाय शीश या हाय ग्रीव हंस वृष्णिगर ऋषभ पृथु नरसिंह कूर्मा धनवंतरी मोहिनी वामन परशुराम राघवेंद्र व्यास बलराम कृष्ण बुद्ध तथा कल्कि. श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख लीला अवतार के रूप में नहीं हुआ है क्योंकि वे प्रच्छन्न अवतार हैं. इस कलयुग में लीला अवतार नहीं है अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भगवान का अवतार प्रकट है. श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या हुई है.
So in the text 100, Gopinath continues, Pratiyogi Karina Krishna Yuga Vata Tarka Nishta Hridaya Tumar Nalika Vichar.
Gopinath Acharya ne aage kaha, निश्चित रूप से प्रत्येक युग में एक अवतार होता है जो युग अवतार कहलाता है किंतु आपका हृदय तर्क के कारण इतना कठोर हो चुका है कि आप इन तथ्यों पर विचार नहीं कर सकते.
So he's telling Sarva Bhavacharya that because you're hard-hearted, you've edited the Shastra, you've cut out Chaitanya Mahaprabhu, you have not understood the hidden incarnation, even though it's in the 11th canto of the Bhagavatam. So therefore, your heart is very hard. He is accusing him of this. And then he will continue in the following verses. He will give evidences from Garga. The evidence we will hear in the 101st verse from Garga Muni, who of course was the astrologer and guru for Krishna and Balaram. It's from the 10th canto of the Bhagavatam. This way, Sarvabhu Bhattacharya's fatal mistake is that he didn't know the Bhagavatam. He knew all the Vedas, but he didn't know the Bhagavatam.
अगले प्यार में गोपीनाथ आचार्य श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं जो कि गर्ग मुनि ने कहा है.
So next week we will hear from Garga Muni from the 10th canto of the Srimad Bhagavatam that in the past your son had three bodies of three different colors according to the age. These colors were white, red, and yellow. So yellow incarnation is mentioned. This is the point. In the Bhagavatam, but it's in codes.
तो अगले सप्ताह हम गर्ग मुनि से सुनेंगे जो 10वें स्कंद में जिनका वर्णन आता है कि किस प्रकार गर्ग मुनि नाम संस्करण करते हुए बताते हैं कि जो कृष्ण के तीन विभिन्न रंग वाले शरीर थे श्वेत, लाल तथा पीत. तो पीत वर्ण.
So next week we will study verse 101.
तो अगले सप्ताह हम इस पर चर्चा करेंगे.
Any questions, comments, clarifications?
का कोई प्रश्न या टिप्पणी?
Okay, thank you very much. Jagat Guru Sri Prabhupada.